ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाए जाने की घोषणा की। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने आज देश भर में आगामी उद्यम सर्वेक्षणों पर नई दिल्ली में सम्मेलन का किया आयोजन। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने निधन पर शोक व्यक्त किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाए जाने की घोषणा की। ये घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दूरदर्शी रोडमैप है। इससे एशिया प्रशांत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सतत विकास और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में उड्डयन क्षेत्र भी शामिल है।
भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर्स में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। हम लोगों को, कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को कनेक्ट करने का एक काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और हवाई यात्रा को आम लोगों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। इससे पहले श्री मोदी ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैविक क्रांति के युग की ओर अग्रसर है। वे आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक जैविक भारत 2024 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक समय में पश्चिमी देशों पर सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव था, उसी तरह आज भारत को भी जैविक क्रांति से गुजरना पड़ रहा है। वैश्विक जैविक भारत 2024 के बारे में विचार व्यक्त करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नए कामकाज शुरू करने वाली संस्थाओं, अनुसंधानकर्ताओं, जैविक समूहों, निवेशकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, नीति निर्धारकों के लिए ये एक मंच का भूमिका निभाएगा। वैश्विक जैविक भारत 2024 के अवसर पर 30 से अधिक देशों ने 500 से अधिक प्रदर्शनियां लगाई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इससे नवाचार, विचारों और भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
ग्लोबल बायो इंडिया ऑफर्स अ यूनिक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। इट ऑफर्स वेरीड पार्टिसिपेंट्स रेंजिंग फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्टर्स। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इज अ बिगर इवेंट विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 30+ कंट्रीज, 500+ एग्जीबिटर्स, 5000+ डेलीगेट्स, 1000+ स्टार्टअप, देयर मच मोर।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने आज देश भर में आगामी उद्यम सर्वेक्षणों पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में सर्वेक्षणों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक संघों और हितधारकों के साथ जुड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 5 प्रमुख उद्यम संबंधी पहलू पर चर्चा की गई। इन पहलों में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, सेवा क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, पूंजीगत व्यवसायिकवेक्षण और आर्थिक जनगणना शामिल है। एनएसएसओ की महानिदेशक गीता सिंह राठौड़ ने कहा कि ये सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर अर्थव्यवस्था की गैर कृषि क्षेत्र की एक व्यापार तस्वीर प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और व्यापक आर्थिक अनुमानों में सहायता करते हुए सकल घरेलू उत्पाद और जीएसडीपी आंकड़ों को संकलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में काम करते हैं।
आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें हम लोगों ने एसोसिएशंस को इसलिए बुलाया था कि ताकि वो अपने मेंबर्स को अवेयर करा सकें कि यह सर्वेस होने वाले हैं और उन सर्वेस में हम लोगों को डेटा कलेक्शन में हेल्प होगी। जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी सर्वे का सारा डेटा हमारे मौसपी के वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, उसकी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस और मैनुअल्स उसमें दिए जाते हैं जिससे कि कोई भी हमारे वेबसाइट पे जाके जिस भी इंटरेस्ट का
श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप महानिदेशक अमित निर्मल ने कहा कि सर्वेक्षण देश में रोजगार परिदृश्य की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा।
एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हो रहा है तो उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका एम्प्लॉयमेंट डेटा भी कैप्चर होता है। फिर दूसरा सर्वे जो स्टार्ट हुआ है वो एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं, जो सर्विस सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, इसका एम्प्लॉयमेंट डेटा भी कैप्चर हो रहा है। तीसरी चीज जो रह गई थी वो था रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर्स की सर्विस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट, पर ये बड़ी अच्छी बात है कि एमओएसपीआई अब उस सर्वे को भी स्टार्ट करने जा रहा है। तो अगर इन तीनों सर्वे को आप कंबाइंड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सिनेरियो हमें पता चल जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की है। यह निर्णय हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद लिया गया जिसे कल राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया था। वहीं चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा, मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 6वीं सूची की घोषणा की। इस सूची में 19 उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने पंचकुला से प्रेम गर्ग, फतेहाबाद से कमल बिस्ला, अंबाला से केतन शर्मा तथा दादरी सीट से धनराज कुंडू को उम्मीदवार घोषित किया है। दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक इस महीने की 26 तारीख को आयोजित की जाएगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा स्थायी समिति में एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराना है। स्थायी समिति के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। ये रिक्ति कमलजीत सहरावत के लोकसभा सदस्य चुने जाने के कारण उत्पन्न हुई है। उत्तर रेलवे द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा पखवाड़े के दौरान आज उत्तर रेलवे क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान महाप्रबंधक ने प्रधान कार्यालय की ई पत्रिका सरस्वती संगम का विमोचन किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने राजभाषा पुरस्कार, क्षेत्रीय हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, हिंदी निबंध एवं हिंदी वाक प्रतियोगिताएं और तकनीकी लेख प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। जनजातीय शिल्प कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड इस महीने की 15 तारीख से 19 तारीख तक आगा खान हॉल मंडी हाउस में आदि बाजार प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस प्रदर्शनी में हस्तनिर्मित आभूषण से लेकर जैविक उत्पाद, जनजातीय उत्पाद और जनजातीय शिल्प कला आगंतुकों के लिए उपलब्ध है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 जारी है। इस कार्यक्रम का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए सेमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत मनोचा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब भारत में चिप बनना शुरू हो जाएगा तब रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योग के विकास में मदद मिलेगी।
It's very obvious that he has inspired the world so much that we had great success for a number of meetings yesterday and today. The number of CEOs who have come to India is unprecedented. Actually, the number of CEOs of the entire ecosystem is the best number ever anywhere in the world. So the world is starting to accept that India can be the best trusted partner.
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की महासचिव सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। 72 वर्षीय येचुरी लंबे समय से बीमार थे और एम्स में भर्ती थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि शनिवार को उनका पार्थिव शरीर नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय एके गोपालन भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग दिन 11 बजे से शाम 3 बजे तक उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। बाद में उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ले जाया जाएगा और उनकी इच्छा अनुसार उनके पार्थिव शरीर को चिकित्सा अनुसंधान को दान कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री येचुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना की है। श्री विधूड़ी ने कहा कि इस निर्णय से 6 करोड़ परिवारों को बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से राहत मिलेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने वर्ष 2024-25 के लिए आज बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की शुरुआत की। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए छात्रों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 लोगों को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 33 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। श्री मोदी ने पैरालंपिक्स में उनकी प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी। भारत ने पैरालंपिक्स में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बातचीत के दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय पैरालंपिक्स समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया भी मौजूद थे। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम भेजे जा सकते हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाएगी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया इस वर्ष 1 मई को शुरू हुई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाए जाने की घोषणा की। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने आज देश भर में आगामी उद्यम सर्वेक्षणों पर नई दिल्ली में सम्मेलन का किया आयोजन। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली में एम्स में निधन हो गया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने निधन पर शोक व्यक्त किया। हरियाणा की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।